नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। ओ धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए श्रोता मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों नए नियम की पत्री में से फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इस अध्ययन के द्वारा से अपने जीवन में आत्मिक बातों को सीखा है और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से पिताजी आप हमें से प्रत्येक के जीवन से बोलते और बातचीत करते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक के जीवन में अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज जो कुछ भी हम मनन चिंतन करते हैं, सुनते और सीखते हैं, निश्चित रूप से हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना उन तमाम श्रोता भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन से निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमारी अवस्था में हैं या किसी प्रकार के पारिवारिक दबाव में हैं। पिताजी, आप उन सब के साथ हो, अपने वचन से उन्हें शांति प्रदान करें। आप हमें से हर एक के जीवन से बोले और बातचीत करें। इस समय हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आप हमारे सहायक हों। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12 पद को निकाल लीजिए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, शब्द है उद्धार। उद्धार यहाँ एक आम अर्थ में उपयोग किया गया है। पौलुस उनसे कलीसिया की व्यवस्था और उनके स्वयं के व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए कह रहा है। वह उनकी सहायता के लिए उपस्थित नहीं हो पाएगा क्योंकि वह उनसे काफी दूर है। उसे तो यह भी विश्वास नहीं कि वह फिर कभी उनके मध्य में उपस्थित हो पाएगा, अर्थात उनसे मिल पाएगा या नहीं। वह रोमी कारावास में था, अतः वह कहता है कि वे डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रचारक यह पद रविवार आराधना में पढ़ रहा था। वहां उपस्थित एक छोटी लड़की ने अपनी माता के कान में कहा, माँ, आप उद्धार का काम तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वह वहां ना हो। यह एक अच्छा प्रश्न है। तो आइए हम देखते हैं कि अगले पद में इसका उत्तर है। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर प्रभाव डालता है। परमेश्वर ने आपके विश्वास के द्वारा ही आपका उद्धार किया है और कुछ नहीं। परमेश्वर उद्धार के लिए किसी भी प्रकार के अच्छे काम नहीं चाहता और नहीं मांगता है। आपके उद्धार के बाद परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहता है। परमेश्वर ने आपको विश्वास के कारण जो उद्धार दिया है उसे वह पूरा भी करेगा। जी हाँ, जॉन काल्विन ने कहा, विश्वास अकेला ही उद्धार दिलाता है, परंतु उद्धार दिलाने वाला विश्वास अकेला नहीं है। जी हाँ, याकूब कहता है उसकी पत्री 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई यह कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हमारा मन केवल परमेश्वर के सामने खुला है। वह हमारी सच्चाई को जानता है और वही जानता है कि मेरा विश्वास उद्धार लाएगा या नहीं। परंतु आपका पड़ोसी नहीं जानता कि आपका विश्वास क्या है। मेरे मित्रों, वह तो केवल आपके काम ही को देखेगा और सच्चा विश्वास कर्म करेगा, जिसके कारण लोग आप में अंतर देखेंगे और जानेंगे कि हम सच्चे मसीही विश्वासी हैं। हमें मसीही होने की पहचान लेकर नहीं चलना है। पौलुस उस विश्वास की चर्चा करेगा जो फिलिपी के विश्वासियों में कर्म द्वारा सिद्ध होगा। आइए आप मेरे साथ पढ़िए फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। यहां पर ध्यान दीजिए, यदि आप कुड़कुड़ाते हैं तो ना तो कलीसिया में और ना संडे स्कूल में कोई पद आप संभालें। इससे मसीही कार्य को सबसे अधिक हानि पहुंचती है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। इस बात को हम कई कलीसियाओं में आज नहीं देख पाते हैं। लोग पद तो लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, परंतु कुड़कुड़ा करके करते हैं। इसलिए पौलुस फिलिपी की कलीसिया से कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना किसी विवाद के किया करो। तब हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। ज्योति की नाई चमको। रात में हमें आकाश के सितारे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब परमेश्वर इस अंधकार भरे संसार को देखता है तो वह यहाँ चमकचमाती बत्तियां देखता है। बच्चे गाते हैं, एक छोटा दिया यीशु का। मेरे मित्रों, ऐसा ही है। और पौलुस भी कहता है कि जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जी हाँ, सितारे आकाश में हैं और हम पृथ्वी पर हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए भी एक सितारे के समान चमकें। हम आगे पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मेरे प्रियो, जीवन और ज्योति में संबंध है। जब हम जीवन का वचन थाम लेते हैं तो हम संसार में ज्योति बन जाते हैं। पौलुस को सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ कि फिलिपी के विश्वासी भले कामों को प्रकट कर रहे हैं। वे पौलुस के मन के अति निकट थे क्योंकि वे उसी के द्वारा प्रभु के पास आए थे। जब आपका बेटा आपकी बातों को सुन करके जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करता है तो आप आनंदित होते हैं, और पौलुस के मन में भी इस प्रकार का आनंद था। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 17 पद में लिखा है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। परमेश्वर के वचन के अति उत्तम पदों में से यह एक है। जी हाँ, यह मसीही जीवन का चित्रण है। पुराने नियम में जो आरंभिक बलिदान दिए गए हैं उनमें से यह एक है। उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय उसके 14 पद में याकूब ने बेतेल में एक वेदी बनाई और उस पर अर्घ चढ़ाया तथा तेल उंडेला था। लय व्यवस्था और गिनती की पुस्तकों में अन्य बलियों का उल्लेख किया गया है, जैसे होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, परंतु पाप बलि या दोष बलि में अर्घ नहीं चढ़ाया जाता था। उसकी विशेषता यह थी कि उसका मुक्ति से कोई संबंध नहीं है, मसीह के मनुष्यत्व से उसका संबंध नहीं था। वे दाखरस लेकर भस्म हुए बलिदान पर उंडेल देते थे और वह धुआं बनकर उड़ जाता था। पौलुस कहता है, मैं तो चाहता हूं कि मेरा जीवन मसीह के बलिदान पर अर्घ की नाई उंडेला जाए। मेरे प्रियो, पौलुस जानता था कि प्रभु यीशु ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। वह अपने जीवन को अर्घ की नाई बनाना चाहता था कि धुआं बनकर उड़ जाए। वह ऐसा भस्म हो जाना चाहता था और ऐसा हो जाना चाहता था कि वह नहीं, केवल और केवल प्रभु यीशु ही दिखाई दे। वह चाहता था कि यीशु का मान और महिमान्वन हो। जी हाँ, यह पौलुस का मन था। मैं मसीही जीवन में इससे बड़ी मनोकामना और कहीं भी नहीं देखता। मैं नहीं जानता कि आपकी मनोकामना क्या है। क्या आज आप पौलुस की तरह मन बना करके मसीही जीवन जी रहे हैं? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 18 पद में आगे हम पढ़ते हैं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। दूसरे शब्दों में, यदि तुम्हारा जीवन सुसमाचार की स्तुति के योग्य है तो मैं अर्घ करके चढ़ाया जाता हूं, हम एक साथ इसमें आनंदित होंगे। यह दीनता का जीवन है। यदि किसी में मसीह का मन है तो ऐसी मनोकामना रखेगा जैसा मैं रखता हूं। यह कैसी अद्भुत लालसा है। मेरे मित्रों, पौलुस आनंद और हर्ष के साथ कहता है, आज हम गलत बातों में आनंदित होते हैं। हमें आज इस बात पर आनंद मनाना है कि मसीह हमारे लिए अर्थात मेरे लिए मरा और हम उसकी सेवा कर सकते हैं, मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ। जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर किसी को अपनी सेवा में उपयोग कर रहा है या किसी कलीसिया में मनुष्य उद्धार पाकर विश्वास में स्थिर है, तो हमें आनंदित होना है। यदि हम दीन हैं, तो हमें दूसरों की सफलता में भी आनंद मनाना है। हम में विरोध और झूठी बड़ाई की अधिकता पाई जाती है और इसलिए पौलुस के युग में यह व्यवहार मसीह के नाम को हानि पहुंचा रहा था और आज भी मसीह के नाम को धूमिल करता है। मेरे मित्रों, विश्वासियों में मसीह का मन आनंद उत्पन्न करता है और परमेश्वर का महिमान्वन करवाता है। तीमुथियुस का मन को हम देखेंगे। तीमुथियुस का मन पौलुस के स्वरूप था। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। ध्यान दीजिए, तीमुथियुस पौलुस का आत्मिक पुत्र था। पौलुस को उसमें बहुत अधिक विश्वास था। वह फिलिपी की कलीसिया के लिए तीमुथियुस पर निर्भर कर सकता था और यही कारण था कि वह फिलिपी की कलीसिया में पौलुस तीमुथियुस को भेजता है। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय के 20 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हमने तीमुथियुस का मन देखा और समझा कि उसमें वही मन था जो पौलुस में था। पौलुस का सामन होने का अर्थ है मसीह का मन होना, दीनता का मन होना। मनुष्य के संगठन के लिए नेशनल या वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस की आवश्यकता नहीं है। और सच तो यह है कि दो मनुष्यों में मसीह का मन हो तो वे एक मन एक चित्त होंगे। तीमुथियुस पौलुस का निष्ठावान था। कभी कभी और ऐसा होता भी है कि विश्वासी अपने ही धर्म अभिभावक के विरुद्ध में हो जाते हैं, जैसे संतान अपने माता पिता के विरुद्ध हो जाती है। पौलुस के साथ ऐसा हुआ था, परंतु तीमुथियुस ने ऐसा कभी नहीं किया। पौलुस उसे फिलिपी की कलीसिया में भेज रहा था क्योंकि उसे उस पर पूरा और पूरा भरोसा था। मसीह का मन रखने वाले विश्वासी होना अति उत्तम है। वे एक मन एक चित होकर सेवा कर सकते हैं, वे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। हम फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं न कि यीशु मसीह की। यहां पर फिर से ध्यान दीजिए, वहां ऐसे लोग भी थे जो अपने ही प्रशंसा चाहते थे, वे नाम कमाना चाहते थे और इस कारण वे पौलुस की मान हानि करते थे, जैसा कि आज कई बार हम कलीसियाओं में देखते हैं। जी हाँ, आज आप परमेश्वर के सच्चे प्रचारकों का साथ कैसे दे सकते हैं? आज यदि मैं परमेश्वर के सेवक की आलोचना सुनता हूं तो तुरंत समझ जाता हूं कि कहीं तो विरोध और झूठी बड़ाई का तत्व है। मसीह का मन मसीह के नाम में आने वाले की आलोचना नहीं करवाएगा। पौलुस कहता है, मैं अन्यों पर भरोसा नहीं रख सकता, सिर्फ तीमुथियुस पर, अर्थात वैसे लोग जो परमेश्वर पर पूर्णतः विश्वास रखते हैं और उसके अनुसार मन बनाते हैं और जीवन जीते हैं, उन पर ही आप भरोसा रख सकते हैं। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय के 22 पद में लिखा है, पर उसको जो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। आज एकता के बारे में बहुत अधिक चर्चा की जा रही है। दो मनुष्यों में मसीह का मन हो तो उनसे अधिक एकता किस में हो सकती है? विश्वासी मीलों मील दूर हो, परंतु जब उनमें मसीह का मन होगा तो उनमें बेजोड़ एकता होगी। एक मसीही विश्वासी युवक और एक मसीही विश्वासी युवती के विवाह में जो एकता होती है, जो प्रेम होता है, वह यौन आधारित विवाह से कहीं बढ़कर होती है। भौतिक एकता तो कहीं भी देखी जा सकती है, शारीरिक एकता तो बाजार में बिकती है, परंतु पति पत्नी में मसीह का मन तो हो, उनकी एकता वास्तविक और सच्ची होती है। ऐसी एकता मनुष्यों के संस्कारों से उत्पन्न नहीं होती, यह एक अति उत्तम और महिमामय होती है जो सिर्फ मसीही विश्वास और प्रभु यीशु के द्वारा हमें प्राप्त होती है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा, और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। मेरे प्रियो, पौलुस चाहता था कि तीमुथियुस ही उन्हें पौलुस के बंदी गृह का सुसमाचार सुनाए। पौलुस आशा कर रहा था कि वह बंदी गृह से मुक्ति पाएगा। प्रथाओं के अनुसार पौलुस बंदी गृह से मुक्त किया गया था और उसने वह अच्छी सेवा की, परंतु बाइबल में इसका विवरण हमें नहीं मिलता है। जब रोम के राजा नीरो ने विश्वासियों को सताना आरंभ किया, तब पौलुस को मृत्यु दंड दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं इफ्रुदीतुस का मन मसीह की सेवा में। इफ्रुदीतुस एक और विश्वासी जन था जिसमें मसीह का मन था। पौलुस, तीमुथियुस और इफ्रुदीतुस तीनों मसीह में भाई थे और प्रभु की सेवा भी करते थे। वह फिलिपी की कलीसिया का एक पास्टर था। मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे फिलिपी की पत्री 2 अध्याय उसके 25 पद में, जहां पर लिखा है, पर मैंने इफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। पौलुस ने फिलिपी की कलीसिया की स्थापना की थी, परंतु इफ्रुदीतुस पौलुस से डाह नहीं रखता था। उसमें मसीह का मन था और पौलुस उस पर विश्वास कर सकता था। पौलुस उसे अपना भाई और मसीह में सहकर्मी भी कहता था, अपना सहयोद्धा भी कहता है। पौलुस कहता है कि वह मेरा सहयोद्धा है, वह मेरे साथ युद्ध करता है, वह मेरे न होने पर मेरी पीठ में छुरा नहीं भोंकता, वह मेरे विरोधियों के साथ नहीं हो जाता, वह विश्वास में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। मेरे प्रियो, यह मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी सीख है कि हम एक विश्वासी होने के नाते एक मन होकर के, न कि हम किसी का विरोध करें, बल्कि एक साथ होकर परमेश्वर के लिए अर्थात मसीह के लिए काम करें, जैसा कि पौलुस अपने सहयोगी के साथ करता है। आगे हम देखते हैं कि तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा करने वाला है। वह बंदी पौलुस के लिए व्यवहारिक सेवा करता है। यहाँ पर सारी बातों को हम देख रहे हैं जो इफ्रुदीतुस के बारे में कही जा रही है। आगे लिखा है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 26 पद में, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इफ्रुदीतुस वहां आकर बीमार हो गया और फिलिपी में समाचार पहुंचा कि वह बीमार है, इस कारण उन्हें बहुत दुख हुआ। यह सुनकर कि फिलिपी की कलीसिया को उसकी बीमारी का दुख हुआ, वह फिर बीमार हो गया, क्योंकि उसका दुख उससे सहा नहीं गया था। इससे फिलिपी की कलीसिया और उनके पास्टर के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रकाशन प्राप्त होता है। अपनी सेवाओं में मैं अनेक कलीसियाओं के क्षेत्रों में प्रचार करने को जाता हूं, और मेरा अनुभव मुझे उस कलीसिया में उनके पास्टर और वचन के शिक्षक के साथ उनके संबंध को देखकर उस कलीसिया का मूल्यांकन करने में सहायता प्राप्त होती है। जब वहां का सेवक मुझसे कहता है, हमारा पास्टर बहुत अच्छा है, वह परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो मेरा मन आनंद से भर जाता है। मैं उससे पूछता हूँ, क्या वह परमेश्वर का वचन सिखाता और सुनाता है? वह कहता है कि हाँ, परंतु यह तो हम सुनते ही रहते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि उस पर वचन का प्रभाव नहीं पड़ा, और यदि कलीसिया पर भी यही प्रभाव है तो वह कलीसिया नाश हो जाएगी। बाइबल की शिक्षा और वचन का प्रचार यदि अनदेखा किया जाए तो कलीसियाएं मर जाती है, जैसा आज बहुत अधिक देखने को हमें मिलता है। शैतान बहुत चतुर है, वह परमेश्वर के वचन पर तो आक्रमण करता ही है, साथ ही वह वचन के प्रचारक पर भी आक्रमण करता है। यह मेरे अनुभव में अति सत्य है। कलीसिया की परख उसके पास्टर के प्रति उसका व्यवहार है। इप्रुतितुस अपनी कलीसिया का अति प्रिय पास्टर था। यह फिलिपी की कलीसिया की सराहना का विषय है। मेरे प्रियो, हमारे कलीसियाओं में भी कई पास्टर हैं जो परमेश्वर की सेवा देते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मैं और आप उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। क्या हम उस वचन को ग्रहण करते हैं? क्या हम उनके प्रति चिंता करते हैं? कई बार हम दोष तो लगाते हैं परंतु सीखना नहीं चाहते। आइए आज हम पौलुस और उनके सहकर्मी इपफ्रुदीतुस और तीमुथियुस के द्वारा से इस बात की सीख लें जो फिलिपी की कलीसिया के लिए है। जिस प्रकार से उन्होंने कलीसिया की चिंता की, अपने पास्टर की उन्होंने चिंता की, हम भी एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के विश्वास में, एक दूसरे के उन्नति में मन लगाएं, और निश्चय जाने कि परमेश्वर हमारे मध्य में होकर हमें आशीषित करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम।